एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों के वैश्विक इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल सकती है।
हाँ, कौन सी किताब है ये?
ये किताब है नियोमी क्लाइन की द शॉक डॉक्ट्रिन, द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म।
द शॉक डॉक्ट्रिन, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। और ये किताब आज के समय में भी उतनी ही शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
बिल्कुल, ये समझने में मदद करती है कि कैसे बड़े संकटों के दौरान, जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक मंदी आ गई या युद्ध छिड़ गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो कैसे अक्सर बहुत विवादास्पद और बड़े आर्थिक बदलाव लागू कर दिए जाते हैं।
धारणा को भी चुनौती देती है कि भाई जो मुक्त बाजार नीतियां हैं, फ्री मार्केट पॉलिसीज, वो हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से या सबकी सहमति से ही फैलती हैं।
सही कहा, अक्सर हमें लगता है कि ये नीतियां तो विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन क्लाइन ये सवाल उठाती हैं कि ये आती कैसे हैं? क्या ये वाकई सबकी भलाई के लिए होती हैं या फिर किसी खास एजेंडे को आगे बढ़ाने का जरिया बन जाती है?
दिलचस्प सवाल है। चलिए पहले लेखिका के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नाओमी क्लाइन है कौन और उनका नजरिया इतना खास क्यों माना जाता है?
जी, नाओमी क्लाइन कनाडा की काफी जानी मानी लेखिका है, पत्रकार है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो कोई पारंपरिक अकादमिक अर्थशास्त्री नहीं है।
अच्छा,
हाँ, वो एक खोजी पत्रकार है जो आजकल के विचारों और घटनाओं के पीछे की कहानी को खोजती हैं। उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल चीजों को आसान भाषा में समझाती हैं, और जो अलग अलग घटनाएं होती हैं ना।
हाँ, नो लोगो,
हाँ, नो लोगो।
उसने भी कॉरपोरेट ताकत और ग्लोबलाइजेशन पर काफी गंभीर सवाल उठाए थे। और शॉक डॉक्ट्रिन के लिए तो जहां तक मुझे पता है, उन्होंने दुनिया भर में सालों तक जमीनी शोध किया था।
जी हाँ, बिल्कुल, संकटग्रस्त इलाकों से रिपोर्टिंग की। उनका विश्लेषण सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि उन जगहों की हकीकत से जुड़ा हुआ है जहां ये सब हुआ।
हाँ, ये बात अहम है, इससे उनके तर्क में वजन आता है ना।
बिल्कुल, उनका नजरिया सिर्फ अकादमिक बहसों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी अनुभवों पर आधारित है। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि इसका उन लोगों पर क्या असर पड़ा जो उस संकट से गुजर रहे थे।
तो फिर ये किताब मूल रूप से है किस बारे में? मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है?
देखिए, किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि पिछले लगभग 50-60 सालों में जो कट्टरपंथी मुक्त बाजार नीतियां दुनिया भर में फैली हैं, जिन्हें हम नव उदारवाद या शिकागो स्कूल अर्थशास्त्र भी कहते हैं, वो ज्यादातर शांति से या लोकतांत्रिक सहमति से नहीं आई।
अच्छा, तो फिर कैसे आईं?
क्लाइन कहती हैं कि नीतियों को, जैसे सरकारी कंपनियों का बड़े पैमाने पर निजीकरण करना, सरकारी नियंत्रण हटा देना जिसे डीरेगुलेशन कहते हैं,
हाँ,
और जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं उनमें भारी कटौती करना, इन सबको अक्सर तब लागू किया गया जब समाज किसी बड़े संकट या कह लीजिए शॉक से गुजर रहा था।
हो तो इसी प्रक्रिया को क्लाइन शॉक डॉक्ट्रिन कहती है ना?
जी हाँ, बिल्कुल।
यानी जब लोग किसी बड़ी आपदा या युद्ध या आर्थिक गिरावट के कारण डरे हुए हों, बिखरे हुए हों, कंफ्यूज्ड हों, तब वो ऐसी कट्टरपंथी आर्थिक नीतियों का विरोध करने की हालत में नहीं होते।
सही, ऐसी नीतियां जिन्हें शायद सामान्य समय में कभी मंजूरी ही नहीं मिलती।
और इसी स्थिति का फायदा उठाकर,
हाँ, इसी स्थिति का फायदा उठाकर इन नीतियों को तेजी से लागू कर दिया जाता है। अक्लाइन इसे आपदा पूंजीवाद या डिजास्टर कैपिटलिज्म कहती हैं।
आपदा पूंजीवाद मतलब ऐसा पूंजीवाद जो आपदाओं से दूसरों की मुश्किलों से मुनाफा कमाता है।
बिल्कुल, इसका लक्ष्य होता है संकट का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था और समाज को कॉरपोरेट हितों के हिसाब से ढाल देना।
ये किताब तो फिर काफी लंबे समय को कवर करती होगी।
जी हाँ, ये हमें एक लंबे सफर पर ले जाती है, 1970 के दशक में चिली से शुरू होकर, फिर थैचर के ब्रिटेन, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और पोलैंड,
हाँ,
फिर 9/11 के बाद अमेरिका, इराक युद्ध, और यहाँ तक के कैटरीना तूफान के बाद न्यू ऑरलियंस तक।
बाप रे, तो ये दिखाती है कि कैसे बार बार संकटों का इस्तेमाल एक खास तरह की आर्थिक व्यवस्था को थोपने के लिए किया गया।
हाँ, और ऐसी व्यवस्था जो अक्सर आम लोगों की कीमत पर एक छोटे अमीर तबके को फायदा पहुंचाती है। ये किताब एक पैटर्न, एक सोची समझी रणनीति को उजागर करने की कोशिश करती है।
तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। क्लाइन अपने स्तर को कैसे बिल्ड करती हैं? शुरुआत कहाँ से होती है किताब की?
किताब की शुरुआत थोड़ी चौंकाने वाली है। क्लाइन 1950 के दशक में CIA द्वारा फंड किए गए एक डॉक्टर, डॉक्टर इवेन कैमरन के मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का जिक्र करती हैं।
मनोवैज्ञानिक प्रयोग CIA द्वारा फंडेड, ये क्या था?
ये डॉक्टर अपने मरीजों पर इलेक्ट्रोशॉक और सेंसरी डेप्रिवेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। मकसद था उनकी याददाश्त मिटा देना, उनके व्यक्तित्व को तोड़ देना।
हे भगवान,
क्यों?
ताकि एक कोरी स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट बनाई जा सके जिस पर फिर एक नया व्यक्तित्व गढ़ा जा सके।
ये तो भयानक है, लेकिन इसका आर्थिक नीतियों से क्या लेना देना?
यही क्लाइन का तर्क आता है। वो कहती हैं कि ये जो क्रूर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, वो अनजाने में ही सही आर्थिक शॉक थेरेपी का एक मॉडल बन गई।
आर्थिक शॉक थेरेपी का मॉडल कैसे? मतलब समाज को किसी बड़े संकट या शॉक से आघात पहुंचाकर जो मौजूदा नियम है, संस्थाएं हैं, लोगों की सामूहिक यादें हैं, उनको कमजोर कर देना या मिटा देना,
अच्छा,
ताकि एक नई कट्टरपंथी बाजार आधारित व्यवस्था आसानी से लागू की जा सके। लक्ष्य था कि लोग विरोध ही न कर पाएं।
समझ गया। मतलब जैसे दिमाग को शॉक देकर रीसेट करना, वैसे ही समाज को शॉक देकर रीसेट करना। और इस आर्थिक शॉक थेरेपी के पीछे मुख्य विचारक कौन थे?
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन और उनका शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
ओह, मिल्टन फ्रीडमैन। हाँ, इनका नाम तो सुना है। ये न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और मुक्त बाजार की वकालत करते थे।
जी हाँ, और फ्रीडमैन का एक मशहूर कथन है कि केवल संकट ही वास्तविक या कथित वास्तविक परिवर्तन लाता है।
मतलब संकट ही बदलाव लाता है।
हाँ, क्लाइन बताती हैं कि फ्रीडमैन और उनके अनुयायियों ने अपनी नीतियां जैसे निजीकरण, डीरेगुलेशन, कटौतियां पहले से तैयार रखी थी और वो सही मौके यानी संकट का क्षण का इंतजार कर रहे थे।
इंतजार कर रहे थे, क्यों?
क्योंकि उन्हें पता था कि सामान्य लोकतांत्रिक परिस्थितियों में जनता शायद इन नीतियों को कभी स्वीकार नहीं करेगी।
तो ये कोई अचानक से आई हुई नीति नहीं थी, बल्कि एक तैयार प्लान था जिसे लागू करने के लिए संकट का इंतजार किया जा रहा था।
क्लाइन का तर्क तो यही है।
तो इसका पहला बड़ा उदाहरण कहाँ देखने को मिला?
1973 में चिली में जनरल पिनोशे का जो सैन्य तख्ता पलट हुआ, वो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक शॉक था।
हाँ, वो तो था ही।
इसने मिल्टन फ्रीडमैन के शिष्यों, जिन्हें शिकागो बॉयज कहा जाता था, उनको अपनी आर्थिक नीतियां लागू करने का एक खुला मैदान दे दिया।
और क्लाइंट का तर्क यहाँ क्या है, हिंसा को लेके?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाइन कहती हैं कि पिनोशे शासन ने जो क्रूर हिंसा और दमन किया, वो सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए नहीं था,
तो फिर?
बल्कि आम जनता को इतना डराने के लिए जरूरी था कि वे निजीकरण और सामाजिक खर्चों में कटौती जैसे दर्दनाक आर्थिक बदलावों को चुपचाप सह लें। चिली एक तरह से इस सिद्धांत की पहली प्रयोगशाला बन गया।
यानी डर और आर्थिक नीतियों का सीधा संबंध स्थापित कर रही है वो। लेकिन ये तो तानाशाही नहीं हुआ, क्या लोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा कुछ हुआ?
हाँ, क्लाइंट दिखाती हैं कि कैसे इस मॉडल को अलग अलग रूपों में लोकतांत्रिक देशों में भी अपनाया गया, जैसे मार्गरेट थाचर के ब्रिटेन में।
थाचर के ब्रिटेन में कैसे?
वहाँ फॉकलैंड युद्ध का जो माहौल था, एक राष्ट्रीय उन्माद सा, उसे एक तरह का शौक मान सकते हैं। क्लाइन कहती हैं कि इसका इस्तेमाल मजदूर यूनियनों की ताकत को तोड़ने और उन नव उदारवादी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया जिनका भारी विरोध हो रहा था, जैसे सरकारी कंपनियों का निजीकरण।
अच्छा, मतलब युद्ध के माहौल ने सरकार को वो कदम उठाने की छूट दे दी जो शायद सामान्य समय में संभव नहीं थे।
बिल्कुल, और बोलीविया का भी उदाहरण देती हैं वो।
हाँ, बोलीविया में क्या हुआ था?
आर्थिक संकट। जी, बोलीविया में हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति का संकट था। क्लाइन का तर्क है कि शायद उसे जानबूझकर गहरा होने दिया गया ताकि उसका इस्तेमाल कठोर शॉक थेरेपी लागू करने के बहाने के तौर पर किया जा सके।
तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि संकट, चाहे वो असली हो या उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो या शायद पैदा किए गए हों,
हाँ,
वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करने और अलोकप्रिय नीतियों को थोपने का हथियार बन सकते हैं।
बिल्कुल सही।
फिर आता है सोवियत संघ के पतन के बाद का दौर। रूस और पोलैंड जैसे देशों में क्या हुआ? क्या वहां भी यही हुआ?
क्लाइंट के अनुसार हाँ, वहां भी पश्चिमी सलाहकारों जैसे जेफरी सैक्स का नाम आता है, उन्होंने तेजी से शॉक थेरेपी लागू करने की सलाह दी। मतलब रातों रात कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दो, सरकारी कंपनियों को बेच डालो वगैरह।
लेकिन लोगों को तो शायद लोकतंत्र और बेहतर जीवन की उम्मीद होगी।
हाँ, क्लाइन इसे एक तरह का धोखा बताती हैं। लोगों को उम्मीद थी कि साम्यवाद के बाद धीरे धीरे सामाजिक सुरक्षा वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगी, जैसे स्वीडन या नॉर्वे में है, लेकिन उन्हें मिला क्रोनी कैपिटलिज्म।
क्रोनी कैपिटलिज्म यानी?
यानी ऐसा पूंजीवाद जिसमें सत्ता के करीबी लोग, दोस्त यार, सरकारी संपत्तियों को कवड़ियों के भाव हड़प लेते हैं।
और रूस में इसके परिणाम तो काफी विनाशकारी हुए थे जहां तक मुझे याद है।
हाँ, नतीजा भयानक था। ओलिगार्क यानी कुछ चुनिंदा बहुत अमीर व्यापारी उभर आए जिन्होंने देश की संपत्ति लूट ली। आम लोगों के लिए महंगाई आसमान छू गई, गरीबी बहुत बढ़ गई और यहाँ तक के लोगों की औसत उम्र भी घट गई।
बापरे, जिसे इलाज कहा गया वो तो बीमारी से भी बदतर साबित हुआ।
क्लाइन का तर्क तो यही इशारा करता है।
अब 21वीं सदी में आते हैं, 9/11 के हमलों को क्लाइन कैसे देखती हैं? क्या वो भी एक शॉक था जिसका फायदा उठाया गया?
क्लाइन 9/11 को एक बहुत बड़े शॉक के रूप में देखती हैं और कहती हैं कि अमेरिकी बुश प्रशासन ने इसका भरपूर फायदा उठाया। इसके बाद आपदा पूंजीवाद कॉम्प्लेक्स का उदय हुआ।
आपदा पूंजीवाद कॉम्प्लेक्स, ये क्या है?
ये एक पूरी नई अर्थव्यवस्था है खरबों डॉलर की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया गिरी, सेना और यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन जैसी सरकारी जिम्मेदारियों के निजीकरण पर आधारित है।
मतलब सुरक्षा और आपदा राहत भी एक बिजनेस बन गया, मुनाफे का जरिया।
हाँ बिल्कुल। हैलीबॉटन और ब्लैकवाटर, जो अब अकेडमी कहलाती है, जैसी कंपनियों को बिना किसी खुली प्रतिस्पर्धा के बड़े बड़े सरकारी ठेके मिले। आतंक के खिलाफ युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बन गया जहां डर और असुरक्षा बेचकर पैसा कमाया जा रहा था।
तो यहां मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहा बल्कि निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए अवसर पैदा करने का भी बन गया।
जी, क्लाइन का यही विश्लेषण है।
और इराक युद्ध, उसे तो क्लाइन शॉक डॉक्ट्रिन का चरम उदाहरण मानती है शायद।
बिल्कुल। क्लाइन के अनुसार इराक युद्ध इस सिद्धांत का सबसे नग्न और सबसे क्रूर प्रयोग था। यहाँ शॉक जानबूझकर पैदा किया गया था, शॉक एंड ऑ यानी भयानक बमबारी वाले सैन्य हमले के जरिए।
हाँ, वो तस्वीरें तो याद हैं।
देश पर कब्जे के तुरंत बाद जो अमेरिकी प्रशासक थे पॉल ब्रेमर, उन्होंने शिकागो स्कूल की पूरी विशलिस्ट, पूरी सूची लागू कर दी।
जैसे?
बड़े पैमाने पर सरकारी उद्योगों का निजीकरण, फ्लैट टैक्स लगाना, विदेशी कंपनियों के लिए इराकी बाजार पूरी तरह खोल देना।
तो इरादा क्या था? क्या सिर्फ तेल पर कब्जा करना ही मकसद था, जैसा कि अक्सर कहा जाता है?
क्लाइन कहती हैं इरादा इससे कई ज्यादा बड़ा और भयानक था। इरादा था इराक को एक कोरी स्लेट बनाकर उसे एक आदर्श कॉरपोरेट राज्य में बदलने का।
एक आदर्श कॉरपोरेट राज्य?
हाँ। नतीजा हम सब जानते हैं, इराक तबाह हो गया, समाज बिखर गया, हिंसा बढ़ी। लेकिन इस तबाही के बीच भी पश्चिमी कंपनियों ने पुनर्निर्माण और सुरक्षा के नाम पर भारी मुनाफा कमाया।
तो ये सिर्फ संसाधनों की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक विचारधारा को थोपने की कोशिश थी, चाहे उसकी मानवीय कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों न चुकानी पड़े।
क्लाइंट का विश्लेषण तो यही कहता है।
और अंत में, क्या प्राकृतिक आपदाएं भी इस दायरे में आती हैं? क्या उनसे भी मुनाफा कमाया जाता है?
हाँ, क्लाइंट इस पर भी ध्यान दिलाती हैं। जैसे 2004 की एशियाई सुनामी के बाद कैसे समुद्र तट की कीमती जमीनें, जहां पहले गरीब मछुआरे रहते थे, बड़े बड़े डेवलपर्स के हाथों में चली गईं। लेकिन जो सबसे बड़ा उदाहरण वो देती हैं वो है 2005 में न्यू ऑर्लियंस में आया कैटरीना तूफान।
ओ हाँ, कैटरीना। उसके बाद न्यू ऑर्लियंस में क्या हुआ?
क्लाइन बताती हैं कि जब शहर पानी में डूबा हुआ था और लाखों लोग, खासकर गरीब अश्वेत नागरिक, अपने घरों से दूर थे, विस्थापित थे,
हाँ,
तभी कुछ रूढ़िवादी विचारकों और कॉरपोरेट समूहों ने इसे एक सुनहरा अवसर माना।
सुनहरा अवसर तबाही में?
जी, उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल शहर के पब्लिक स्कूल सिस्टम को लगभग पूरी तरह खत्म करके उसकी जगह चार्टर स्कूलों को लाने के लिए किया, जो निजी तौर पर चलाए जाते हैं।
पब्लिक स्कूल खत्म कर दिए?
लगभग। और जो पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, गरीबों के रहने की जगह, उन्हें तोड़ दिया गया ताकि अमीरों के लिए महंगे अपार्टमेंट्स बन सकें। पुनर्निर्माण के ठेके भी पसंदीदा निजी कंपनियों को दिए गए।
तो नतीजा क्या हुआ?
नतीजा, शहर और ज्यादा बट गया, अमीरों के लिए सुरक्षित चमचमाते ग्रीन जोन और गरीबों के लिए उपेक्षित बदहाल रेड जोन। शहर की पूरी सामाजिक संरचना ही बदल दी गई आपदा की आड़ में।
ये सब सुन के तो मतलब कई बातें साफ होती हैं। इस किताब के मुख्य विषय या संदेश क्या हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? क्या निचोड़ निकलता है? देखिए, पहला और सबसे अहम संदेश तो यही है कि संकट और आघात का सोचा समझा इस्तेमाल होता है। ये एक तरह की 3 स्टेप वाली रणनीति है। संकट का इंतजार करो या उसे पैदा करो, या लागू कर दो। नतीजा होता है आपदा पूंजीवाद, जहां कुछ चुनिंदा लोग दूसरों की तकलीफों से भारी मुनाफा कमाते हैं।
तो हमें अपने आसपास की घटनाओं को इस नजरिए से भी देखना चाहिए।
बिल्कुल। संकट के समय कौन सी नीतियां आ रही हैं और असल में उनसे किसे फायदा हो रहा है, ये सवाल पूछना जरूरी है।
दूसरा बिंदु जो आपने बताया था वो थोड़ा परेशान करने वाला है, यातना और तथाकथित मुक्त बाजारों के बीच का संबंध।
हाँ,
क्लाइन का तर्क है कि शिकागो स्कूल के सिद्धांत जमीन पर उतरते समय अक्सर सरकारी हिंसा और दमन से जुड़ जाते हैं।
चिली का उदाहरण दिखाता है कि कैसे राज्य की क्रूरता का इस्तेमाल सिर्फ विरोध दबाने के लिए नहीं हुआ
बल्कि
लोगों की आर्थिक बदलावों को सहने की क्षमता को तोड़ने के लिए किया गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आर्थिक स्वतंत्रता की बातें कभी कभी बल प्रयोग पर टिकी होती हैं, यहाँ तक कि सेना और आपदा राहत जैसी जरूरी सेवाओं का भी निजीकरण कर देना।
और इससे होता क्या है?
इससे होता ये है कि जो चीजें पहले नागरिक अधिकार या सार्वजनिक सेवा मानी जाती थीं, वे मुनाफे के लिए खरीदी बेची जाने वाली वस्तुएं बन जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो लोकतांत्रिक नियंत्रण कम हो जाता है।
भारत में भी हम ये सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र की बहस लगातार सुनते हैं।
हाँ, और ये किताब उस बहस को एक वैश्विक और ऐतिहासिक संदर्भ देती है।
चौथा संदेश तो सीधा और साफ है, संकट कुछ लोगों के लिए अवसर होता है। मिल्टन फ्रीडमैन की वो बात, संकट ही बदलाव लाता है, उसे क्लाइन एक ठंडी कैलकुलेटेड राजनीतिक रणनीति के रूप में देखती हैं।
मतलब आपदाओं को सिर्फ त्रासदियों की तरह नहीं बल्कि बिजनेस के नए मौकों की तरह देखा जाता है।
हाँ, ये एक मानसिकता है जहां दूसरों की मुसीबत में अपना फायदा ढूंढना जाता है। हमें सतर्क रहना होगा कि मुश्किल समय में जो समाधान पेश किए जा रहे हैं वो वाकई सबके भले के लिए हैं या सिर्फ कुछ खास समूहों के मुनाफे के लिए।
पांचवा, ये पूरी रणनीति मूल रूप से अलोकतांत्रिक है ना?
बिल्कुल, ये मानकर चलती है कि धीमी बहस और सहमति वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शुद्ध आर्थिक नीतियों को लागू करने में रुकावट डालती हैं।
इसीलिए शॉक थेरेपी को तेजी, गोपनीयता और सामान्य राजनीतिक बहस को दरकिनार करके लागू करने की जरूरत पड़ती है।
जी हाँ, इसमें जनता की राय या सहमति के लिए कोई जगह नहीं होती, यह लोकतंत्र की मूल भावना के ही खिलाफ है। यह हमें सार्वजनिक नीति निर्माण में पारदर्शिता और भागीदारी के महत्व की याद दिलाता है।
छठा, आपने एक कॉर्पोरेट राज्य की बात की थी, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार के पारंपरिक काम जैसे सुरक्षा देना, स्कूल चलाना, पुनर्निर्माण करना, ये सब निजी कंपनियों को सौंप दिए जाते हैं।
जैसे 9/11 के बाद अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी उद्योग।
हाँ, या इराक का निजीकृत पुनर्निर्माण, ये इसके बड़े उदाहरण है। इसे जवाबदेही धुंधली हो जाती है और मुनाफे का लालच जनहित पर हावी हो सकता है।
और सातवां, इन सब के बावजूद क्या कोई उम्मीद की किरण भी है?
हाँ, ये जरूरी बात है। क्लाइन प्रतिरोध की संभावना पर भी जोर देती है। वो जमीनी स्तर के आंदोलनों और समुदाय आधारित पुनर्निर्माण के प्रयासों को भी उजागर करती हैं।
तो उनका मानना है कि इस रणनीति को समझना ही
हाँ उनका मानना है कि शॉक डॉक्ट्रिन की रणनीति को समझना ही उसे बेअसर करने का पहला कदम है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
क्लाइन के कुछ विचार तो वाकई दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे ये मूल रणनीति की सामूहिक सदमे के पलों का इस्तेमाल उन कट्टरपंथी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए जिन्हें जनता सामान्य समय में कभी स्वीकार नहीं करेगी।
हाँ, और ये नीतियां जैसे इंतजार में रहती हैं सही मौके की ताक में।
और मिल्टन फ्रीडमैन का वो कथन भी, केवल संकट ही वास्तविक परिवर्तन लाता है। जब संकट आता है तो क्या कदम उठाए जाते हैं, ये उन विचारों पर निर्भर करता है जो आसपास मौजूद होते हैं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे नीतियां पहले से दराज में तैयार रखी जाती हैं, बस संकट रूपी ट्रिगर का इंतजार होता है।
एक और विचार जो मुझे बहुत असरदार लगा वो है दोहरा आघात वाला। पहला आघात तो खुद आपदा या संघर्ष का होता है जो समाज को झकझोर देता है, और फिर आता है दूसरा आघात उन कट्टरपंथी आर्थिक नीतियों का जो बची खुची सार्वजनिक संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा को भी छीन लेती हैं।
यानी एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत, और वो भी अक्सर जानबूझकर लाई गई।
और इराक वाला विचार भी सोचने पर मजबूर करता है कि वो युद्ध सिर्फ तेल या सत्ता के लिए नहीं था
बल्कि एक पूरे देश को मिटाकर उसे कॉरपोरेट हितों के अनुरूप एक आदर्श राज्य के रूप में फिर से गढ़ने का एक भयावह प्रयोग था। शॉक डॉक्ट्रिन की शायद सबसे चरम प्रयोगशाला।
तो इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या ताल्लुक है? हम मतलब आम लोग इन विचारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस किताब को पढ़ने के बाद खबरों को देखने का नजरिया बदल जाता है, खासकर संकट के समय की खबरों को।
कैसे?
जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो आर्थिक हो, प्राकृतिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या राजनीतिक, हम ये सवाल पूछ सकते हैं, इस मुश्किल घड़े से असल में किसे फायदा हो रहा है? क्या जो समाधान पेश किए जा रहे हैं वे ऐसे स्थायी बदलाव हैं जिन्हें सामान्य समय में लोग शायद स्वीकार नहीं करते? कहीं आपातकाल की आड़ में किसी जरूरी सार्वजनिक सेवा का निजीकरण तो नहीं किया जा रहा?
हाँ, ये हमें सिर्फ सतही खबरों से आगे जाकर सोचने में मदद करता है, एक तरह का क्रिटिकल लेंस देता है।
बिल्कुल। दूसरी बात, ये हमें नागरिक के तौर पर ज्यादा जागरूक और सक्रिय बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। मजबूत सार्वजनिक संस्थानों का महत्व समझना, जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।
हाँ, हम अक्सर इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
जी, लेकिन ये किताब दिखाती है कि ये कितने जरूरी हैं और कितने नाजुक भी।
और जब भी निजीकरण या डीरेगुलेशन की बात हो तो आंख मूंद कर उसका समर्थन करने के बजाय सवाल पूछना जरूरी है ना?
बिल्कुल। ये सिर्फ आर्थिक फैसले नहीं होते हैं, इनके गहरे सामाजिक और राजनीतिक परिणाम होते हैं। किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा? क्या इससे असमानता बढ़ेगी? ये सवाल पूछने चाहिए।
ये किताब पिछले 50-60 सालों की बड़ी वैश्विक घटनाओं को समझने का एक अलग फ्रेमवर्क भी देती है।
हाँ, ये चिली के तख्ता पलट, थैचर के सुधारों, सोवियत संघ के विघटन, 9/11 और कैटरीना तूफान जैसी अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के बीच एक धागा पिरोती है।
ये दिखाती है कि शायद ये अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं।
जी, और आखिर में ये सामुदायिक एकजुटता और आपसी मदद की अहमियत पर भी जोर देती है।
वो कैसे?
हाँ, क्लाइन का निष्कर्ष है कि आपदा पूंजीवाद का असली जवाब समुदाय आधारित जमीनी स्तर पर होने वाला पुनर्निर्माण है। जब संकट आता है तो सिर्फ सरकार या कॉरपोरेट मदद का इंतजार करने के बजाय समुदाय खुद कैसे संगठित होकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
हाँ।
और अपनी शर्तों पर, अपनी जरूरतों के हिसाब से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सबक है इसमें।
तो कुल मिला के इस किताब से क्या मुख्य सबक मिलता है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए?
मेरे लिए सबसे मूल्यवान सबक ये है कि जो कट्टरपंथी मुक्त बाजार विचारधारा की दुनिया भर में जीत हुई है, वो कोई शांतिपूर्ण या स्वाभाविक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रही है। इसका फैलाव अक्सर मानवीय पीड़ा, संकट और यहाँ तक कि हिंसा से जुड़ा रहा है। ये समझना कि सामूहिक संकट के क्षण सिर्फ त्रासदियाँ नहीं होते,
बल्कि
वे राजनीतिक रूप से बहुत नाजुक पल होते हैं, जब लोकतांत्रिक सिद्धांत और आम लोगों के हित सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, ये हमें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत बताता है।
सही कहा। ये किताब हमारे नजरिए में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह आधुनिक इतिहास को सिर्फ पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की पुरानी कहानी से आगे ले जाती है।
हाँ, ये दिखाती है कि असली संघर्ष शायद एक मिश्रित नियमों में बंधी अर्थव्यवस्था, जिसमें बाजार के साथ सामाजिक सुरक्षा भी हो, और एक कट्टरपंथी कॉरपोरेट संचालित मॉडल के बीच है।
और ये कॉरपोरेट मॉडल क्लाइंट के अनुसार फलने फूलने के लिए लगातार झटकों और संकटों पर निर्भर रहता है।
बिल्कुल, ये इतिहास को देखने का एक नया चश्मा है।
और जो स्थायी सीख मिलती है वो है गहरी सतर्कता। चेतावनी ये है कि संकट को बर्बाद न होने दें, लेकिन ये सुनिश्चित करके कि संकट का इस्तेमाल कॉरपोरेट हित साधने के लिए न हो,
बल्कि
आम नागरिकों द्वारा एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए हो। संकट बदलाव का मौका जरूर देता है, लेकिन सवाल ये है कि वो बदलाव किसके हित में होगा।
किताब सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक औजार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं और संकट के समय हम अपने मूल्यों की रक्षा कैसे कर सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।